તારીખ 18/6/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 866 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 451
છે. વિષય કે પ્રતિ ઉદાસીનતા છે ઓર મહત્પુરુષ કે ચરણ કમલ કે ઉપાસના કે બલ છે દ્રવ્યાનુયોગ પરિણત હોતા હૈ. દ્રવ્યાનુયોગ કિસકો પરિણત હોતા હૈ ઇસ પ્રશ્ન કા એ ઉત્તર હૈ. સીધા પ્રશ્ન એ ઉઠાયા જાય કે એસા મહાકલ્યાણકારી દ્રવ્યાનુયોગ કિસકો પરિણત હોતા હૈ એ તો બતાઈએ. મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં જિસકો દર્શન મોહ કા અનુભાગ ઘટા હો, દર્શન મોહ કા અનુભાગ ઘટા હો એસા કહે, યા પાત્રતા હુઈ હો એસા કહે. આગમ ભાષા સે દર્શન મોહ કા અનુભાગ ઘટા એસા કહેતે હૈ. અધ્યાત્મ ભાષા મેં પાત્રતા હુઈ, સુપાત્ર જે હૈ એસા કહેને મેં આતા હૈ. યાને જો ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ હૈ ઉસકો દર્શન મોહ કા અનુભાગ ઘટ જાતા હૈ, ઉસકો દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમિત હોતા હૈ, ઉસકો સિદ્ધાંત બોધ પરિણમિત હોતા હૈ. એક તો વો બાત લિયા હૈ. દૂસરા નષ્ટ હોને સે યા તો દ્રવ્યાનુયોગ ઘટ જાય, યા તો દર્શન મોહ ઘટ જાય, યા તો દર્શન મોહ નષ્ટ હો જાય, ઉપશમ હો જાય. નષ્ટ હો જાય મને ઉદય મેં નહીં હો, ઉસકો નષ્ટ કહેને મેં, અભાવ કો નષ્ટ કહેતે હૈ. ઉદય કા અભાવ ઉપશમ પહેલા હોતા હૈ, તો ઉદય કા અભાવ હોતા હૈ તો વહાં દર્શન મોહ એસા દબ જાતા હૈ, ઉપશમ હોને સે દબ જાતા હૈ ભાવ મેં ઓર દ્રવ્ય મેં દોનો મેં. કર્મ પરમાણુ ભી સત્તા મેં ઉપશમિત રહેતે હૈ, ભાવ ભી ઉપશમ હો જાતા હૈ તો વહાં દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમિત હોતા હૈ. યાને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપી ધર્મ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. નહીં હો સકતા હૈ, વો તો તીન કાલ મેં નહીં બન સકતા. યે તો સબ્જેક્ટ ટુ કન્ડિશન હર જગે લેના હી હૈ કે પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ કે સાનિધ્ય બિના, ઇસકે ચરણ કમળ કી ઉપાસના મેને ઉસકી અત્યંત ભક્તિ કે બિના, ઉસકી પહેચાન કે પહેચાન સે જો ઉસમે બહુમાન હોતા હૈ પરમેશ્વર બુદ્ધિ તક કા, એસા હુએ બિના દ્રવ્યાનુયોગ પરિણમિત હોતા નહીં. યાને કે દર્શન મોહ કા અનુભાગ ભી યથાર્થ રૂપ સે ઘટતા નહીં. દેખીએ દર્શન મોહ કા અનુભાગ એ યથાર્થ રૂપ સે ભી ઘટતા હૈ ઓર યથાર્થ રૂપ સે ભી ઘટતા હૈ. ઓગ સંજ્ઞા સે બીતરાગી સચ્ચે દેવગુરુ શાસ્ત્ર ઓર સત્પુરુષ કે પ્રતિ ભક્તિ હોતી હૈ તો ભી દર્શન મોહ ઘટતા હૈ. સત્શાસ્ત્ર કા સ્વાધ્યાય તત્વજ્ઞાન કા અધ્યાસ સે ભી દર્શન મોહ કા અનુભાગ ઘટતા હૈ. લેકિન એસા અનંત બાર ઘટ કરકે ભી બઢ ગયા. ક્યા હુઆ હૈ અબ તક કે એસા તો અનંત બાર દર્શન મોહ ઘટા ભી હૈ ઓર ફિર બઢ ભી ગયા હૈ. ક્યોંકિ ઓગ સંજ્ઞા કી પ્રકૃતિ એસી હૈ કે દર્શન મોહ ઘટતા હૈ. અગર લંબે તાકાલ તક ઓગ સંજ્ઞા મેં કોઈ જીવ રહેતા હૈ, યાને મુમુક્ષુ પુરાણા હોતા હૈ, ये पुराणापन उसको मारता है. देखो हम कहेंगे कि ये हमारे बहुत पुराने मुमुक्षु है, क्या ये इसका गौरव है कि नहीं? ये इसका गौरव नहीं है किंतु लांछन है कि इतने लंबा काल तक मुमुक्षु बने में रहा कैसे? दर्शन मुख का अनुभाग तो घटा होगा क्योंकि सत्पुरुष के सानिध्य में आया है, तत्व ज्ञान के अभ्यास करता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति पूजा भक्ति समर्पण करता है तो दर्शन मुख का अनुभाग घटता है. लेकिन ए यथार्थ रूप से, यथार्थ रूप से कब घटता है कि जब सत्पुरुष की पहचान होती है, तब देव गुरु शास्त्र और अपने आत्मा की पहचान होती है तो दर्शनों का अनुभाग यथार्थ रूप से कटता है, वो उपशम के योग्य होता है। यथार्थ रूप से जब घटता है तो उपशम के योग्य होता है। दर्शन मोह स्वयं मूल है, मूल का मूल नहीं होता कभी। ठीक राजू भाई, दर्शन मोह संसार का परिभ्रमण का मूल है, यानी सभी प्रकार के दोष का दुख का मूल तो वही है, सभी दुख का मूल यही है, वो खुद ही मूल है। जैसे धर्म का या मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, वैसे अधर्म का, दुख का और संसार परिभ्रमण का मूल दर्शन मोह है। दोनों मूल है, एक बिगड़ा हुआ है एक सही रूप में है, ऐसी बात है। तो सही स्वयं मूल है, फिर मूल का मूल बताएंगे तो आपका और प्रश्न आ जाएगा तर्क में से, क्योंकि ये तर्क ज्ञान है कि फिर इसका मूल बताओ, इसका कोई मूल बताए तो बोलो फिर इसका मूल बताओ, क्योंकि हमको तो मूल ही समझना है और कुछ करना नहीं है। अपने दर्शन मूल को समझे पहचाने तो ये तर्क आने वाला नहीं है। और दूसरा एक 128 में से बहुत सुंदर बात निकला है, गोपाल देव ने 128 नंबर के पत्र में बहुत प्रश्न उठाए है ना, क्या करना। तो उत्तर भी नेपथ्य माते मिलते हैं, प्रश्न भी अंतर में से होगा। अधिक क्या कहना, प्रश्न तो इसमें है, ये जो पैराग्राफ है अधिक क्या कहना वाला जो है ना, ये 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ उसमें प्रश्न लिया है। परंतु कितनी ही निरुपायता है वहां क्या करना, उसका उत्तर दे दिया। फिर कहते हैं कि जब तक यथा योग्य जय न हो तब उसका क्या करना, कदापि किसी तरह से उसमें कुछ करे तो वैसा कहाँ स्थान है कि वहां जाकर रहे, इसका भी प्रश्न, वो भी प्रश्नार्थ है। वैसे संत कहाँ है जहाँ जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें, वो भी प्रश्नार्थ है। तो फिर अब क्या करना, इतनी इतनी समस्या है अब क्या करना, इसका उत्तर दिया है नेपथ्य में से कि चाहे जो हो, चाहे जितना दुख सहो, चाहे जितना परेशान सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, चाहे जितनी उपाधियां सहन आपड़ो, चाहे जितनी आधियां आपड़ो, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र रहो आयुष, और फिर भी दुर्निमित हो उस वक्त, परंतु ऐसा करना ही है, तब तक हे जीव तेरा छुटकारा नहीं है। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है और ये उत्तर यथा योग्य भी है। क्या निकलता है इसमें से कि अगर ऐसी समस्या अंतर में से उठती है तो उत्तर भी अंतर में से मिलता है, क्योंकि अपनी आत्मा ही परम गुरु है। दूसरे गुरु तो उपस्थित होवे नहीं होवे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि तो दूसरे गुरु का संयोग होना ये तो पूर्व कर्माधीन है, पुण्याधीन है। नहीं भी हो कौन उत्तर देगा, क्योंकि तो अपनी आत्मा अंदर में से उत्तर देगा। उसको सदगुरु भी मिलेगा, प्रश्न उठा इस वक्त शायद सदगुरु की उपस्थिति न हो तो अपना परम गुरु उत्तर देगा, अगर मिलेगा तो सही, उसको नहीं मिलेगा वो बात भी नहीं है। क्या क्या बात चली राजू भाई, प्रश्न भी अंतर में से आना चाहिए फिर उसका उत्तर मिल जाएगा। ऊपर से तर्क लड़ा दिया उसमें सही समाधान होने वाला नहीं है, ऊपरी ऊपरी प्रश्न उठता है, समाधान मिलता है तो ऊपरी ऊपरी समाधान होता है, मूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव को सैकड़ों प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे लोगों ने, लेकिन अंतर में से जिसको प्रश्न उठा उसका उत्तर उसको जो मिला, गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या गुरु भी प्रसन्न हो जाते हैं? अरे, इसके आत्मा में से अंतर में से प्रश्न उठा है, ये जीव अवश्य धर्म का, सम्यक दर्शन का, मोक्ष का अधिकारी ही है। तो कृपालु देव ने ऐसे सतपुरुष की कृपा को ही सम्यक दर्शन बोला है। क्या देखिए पृष्ठ संख्या 22 नंबर का आंख निकाले, आंख 22 पृष्ठ संख्या 110 होगी आप लोगों के। मेरे प्रथम 160 नंबर की है, 21 नंबर का आंख है, तुम्हारे 159 है, मारे 160 है, 110 नंबर का वचनामृत है। हाँ, 126 वचनामृत मे 110 नंबर नो है। मिला? क्या लिखा है? पवित्र पुरुषों की कृपा दृष्टि ही लिया लगाया है, सम्यक दर्शन है। अन्य मत में भी वो आता है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पूजा मूलम गुरु पादम, ऐसा करके लिया है ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिया है, तो यह सम्यक दर्शन लिया है। इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। क्यों? कि यह जीव अवश्य सम्यक दर्शन पाने वाला है। क्यों प्रसन्नता आई? ये प्रश्न आया था तो राजू भाई का चिट्ठी भेजा, राजू भाई डॉक्टर राजेंद्र सूरत से उसका चिट्ठी आया था। इसका क्या अर्थ है? सतपुरुष की, पवित्र पुरुषों की कृपा ही सम्यक दर्शन है, इसका अर्थ क्या है? ऐसा करके प्रश्न पूछे कि इसकी पात्रता ऐसी देखी कि सतपुरुष का चित्त प्रसन्न हो उठा। ऐसे बाह्य पदार्थ में कहीं भी सतपुरुष को प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि इष्ट अनिष्ट बुद्धि चली गई है, इष्ट में प्रसन्नता होती है। जैसे अच्छा भोजन मिले तो प्रसन्नचित हो जाएगा, वाह बहुत अच्छा आज मिला है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोई पात्र जीव को देखते हैं तो सत्पुरुष का चित्त भी प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? कि उसमें एक बीज देखा जो आगे जा करके उसका अंकुर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप निकलने वाला है। ये अंकुर फूटेगा इसमें से और इसका फल निर्वाण पद है, तो पूरा पूरा का पूरा हिसाब एक प्रसन्नता में देखा जाता है। इसलिए उनको ये सम्यक दर्शन कहने में आया है। इसलिए बोला था, कुछ दिन पहले बात चली थी, हमने पहले जो सतपुरुष के महत्व का प्रश्न पत्र पढ़े दो चार, कि सतपुरुष के अंतेवासी होकर के रहना है। मुमुक्ष को कैसा रहना है? इसके अंतेवासी रह करके समीप रहना है, भाव से और द्रव से, द्रव से और भाव से, दोनों से उनके समीप रहना है। द्रव से शायद नहीं रह सकता, हो सकता है अगर ऐसा कोई पाप का बड़ा अंतराय कर्म बांधा हो तो भावना पूरी नहीं भी होती है, लेकिन द्रव भाव से तो समीप हो ही जाता है। ये सुगानी जी का दृष्टांत है, तो द्रव से समीपता नहीं हुई छटपटाते हुए भी, भाव से क्या बोले कि मेरे हृदय में क्या है मैं चीर कर कैसे बताऊं। हनुमान जी ने दिखाया था ना रामचंद्र जी को, छाते फाड़ करके दिखाया था कि देखो राम को इधर मैंने बिठाया है, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं कैसे दिखाऊं कि गुरुदेव उन्होंने मेरे हृदय में गुरुदेव के लिए क्या स्थान है, ऐसा करके। तो ऐसी समीपता भाव से आती है, सत्पुरुष का चित भी प्रसन्न हो उठता है, यही सम्यक दर्शन है, एक उपचार है, ये कार्य सम्यक दर्शन है। इसका कारण देखा और ये 17 गाथा में लिया आत्मसंधि में, प्रत्यक्ष सदगुरु ने आज्ञा ये चाले, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य, समकित तेने भाख्यों कारण गणी प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष शब्द का वहां प्रयोग किया है। तो ये बीज है, बीज में से मूल होगा, मूल में से अंकुर होगा, अंकुर में से वृक्ष और मोक्ष फल आएगा।
उसका मन भी वही करता है,
वहाँ एक जगह से, एक जगह उसको उसका मन ठहरता है, एक सुपात्र जी है, वो आगे जाकर हमारी जाति में आने वाला है, उसकी जाति देखी है। क्या सिद्ध भगवान को अगर राग होता तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, क्या ये मेरी जाति में आने वाला है, वो मेरे बगल में बैठने वाला है, आगे जा करके सिद्धालय में आ जाएगा, हमारी पंक्ति में बैठेगा, वो नीचे नहीं बैठेगा, हमारी पंक्ति में बैठेगा वो। तो कहते हैं वो आखिर में लिया, पहले पहले कारण वो लिया, अनुदर्शन मोह का अनुभाग घटे अथवा नष्ट होवे, विषय के प्रति उदासीनता होवे, कहीं भी पुद्गल पर्याय में सुख का आभास नहीं हो, सुखाभास नहीं हो, पुद्गल पुद्गल है, परमाणु में कहीं सुख दुख नहीं है, न सुख है न दुख है, इसलिए जहां सुख दुख का मतलब नहीं उसके प्रति उदासीन हो जाएगा। विषय के प्रति उदासीनता से वो भी दर्शन मोह का अनुभव घटे तो आता है, वरना सही उदासीनता नहीं आती है। काल्पनिक वैराग्य आता है, रुंधा हुआ कषाय रूप वैराग्य आता है, द्वेष गर्भित मान गर्भित वैराग्य आता है, या ओग संज्ञा गर्भ वैराग्य होता है, ऐसी उदासीनता की यहाँ बात नहीं ली है, दर्शन मोह का अनुभव घटने वाली बात है। और महत्पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से, बलवान उपासना चाहिए, कैसी
बलवान,
नहीं तो तुम कहेंगे हम भी सतपुरुष को सुनते थे, जाते थे सोनगढ़, बहुत रहते थे वहां, हाँ बहुत समर्पण भी किया, लेकिन उपासना का बल लिया है, बलवान उपासना हो, अंतर का बल हो उसके पीछे, क्या होगा? सत्पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से द्रव्यानुयोग परिणत होता है, पहचान आई, उनके प्रति अत्यंत भक्ति आई, ये इसके चरण कमल की उपासना है। चरण मैंने वचन, ये चौथा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तो उसके वचन की उपासना मैंने उसको अंगीकार करना, उसके वचन को जो अपने प्रयोजन को हो, प्रयोजन का हो, उसका अमलीकरण करना, शीघ्र ही अमलीकरण कर लेना, उसी वक्त अमलीकरण कर लेना, यही उपासना का बल है। बल है तो अमल में जाएगा, अमल कब करेगा? कि बल होगा तो, अगर बल नहीं होगा तो सुनेगा, हाँ भी भरेगा लेकिन काम करेगा नहीं, तो ऐसे हाँ भरने से वो काम नहीं होता, और ऐसे हाँ भरना वो सही हाँ नहीं है, वो झूठी है। कल आया था ना, ऊपर ऊपर से हाँ भरते हैं, ऐसा काम में नहीं आता। ये द्रव्यानुयोग किसको परिणत तो होता है? ज्यो ज्यो संयम वर्धमान होता है त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ परिणत होता है। अब बाहर में जो सम्यक दृष्टि है उनको स्वरूपाश्रित जो संयम है, शुद्ध परिणति जैसे जैसे वर्धमान होती है वैसे वैसे वो द्रव्यानुयोग के विषय में अधिक गहराई में, अधिक गहराई में, अधिक गहराई में जाता है। जैसे मोक्ष मार्गी तो सम्यक दृष्टि भी है और मोक्ष मार्गी तो मुनिराज भी है, लेकिन मुनिराज को जो द्रव्यानुयोग परिणत हुआ है उतना समय दृष्टि को परिणत नहीं हुआ है। गुरुदेव कहते थे समय सारादि महान परमागम पढ़ते थे, ओहो ये परमागमों में द्रव्यानुयोग का विषय गंभीर इतना गहरा है, क्या करे हमारी पहुंच उतनी नहीं है, ऐसा कहते थे। जहाँ आचार्यों की पहुंच है वहां हमारी पहुंच नहीं है, ऐसा कहते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये सुनने वाले हमारे शिष्यों को क्या लगेगा, हमारी पहुंच नहीं है ऐसा कहने से इन लोगों को क्या लगेगा कि उनको जो समझना वो समझे, जितनी जिसकी समझ हो उतना समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे, समझे तो समझे। जो स्पष्ट हकीकत है सत्य है वो तो जाहिर कर देते थे। इतना गंभीर विषय है, एक ही वचन है, यही वचन में आचार्य का जो आशय जितनी गंभीरता से गहराई से आता है उतना नीचे वाले की पहुंच नहीं होती है।
नहीं
मूल में तो वो नहीं है, सत्पुरुष वाली बात नहीं है, तो दर्शन का अनुभाग यथार्थ घटता नहीं है, यथार्थ रूप से घटता नहीं है, तो फिर द्रव्यानुयोग परिणमित होता नहीं है। शास्त्र तो पढ़ सकता है सूक्ष्म है इसलिए, लेकिन द्रव्यानुयोग परिणमित हो सकता नहीं है। वो तो है, ऊपर ऊपर से है उसको है, ऐसा क्या कहे, ऐसा करके लिया। अब जो सम्यक दृष्टि है उसको जो जो स्वरूपाश्रित परमार्थ संयम वर्धमान होता है, तो परमार्थ संयम के साथ साथ पंचम षष्ठम गुण स्थान में व्यवहार संयम का भी दिखाव बाहर में आ जाता है, तो द्रव्यानुयोग यथार्थ परिणत होता है, उतनी गहराई द्रव्यानुयोग की विशेष रूप से परिणमन में आती है। ऐसे संयम की वृद्धि का कारण सम्यक दर्शन की निर्मलता है, जो सम्यक दर्शन निर्मल हुआ यही कारण से संयम वर्धमान हो रहा है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होता तो किसी को संयम है ही नहीं। वो दर्शन पाउडर में लिया ना असंजनम न बंदे ही, तो वहां तो द्रव्यलिंग की बात चली है, पंचमाव्रत पालन करता है निरतिचार, तो संयम है क्या नहीं है, समिति गुप्ति 28 मूल गुण निरतिचार पालन करते हुए भी भगवान कहते हैं कि वो असंयमी है। कैसा है? असंयमी है, बंधन करने योग्य नहीं है, असंजनम न बंदे ही नहीं कहा है। ऐसे बात है, नियम सार के प्रवचन में बात लिया है गुरुदेव ने, कल ही देखा है नियम सार के प्रवचनों में जो सतोत्तर से एकासी गाथा है, पंच रत्न नियम सार की पांच रत्न गाथा है, उसके प्रवचन करते हुए उस बात का जिक्र किया है, अनुसंधान लिया है, अष्टपाहुड़ में दर्शन पाहुड़ में असंजनम न बंदे ही आता है, वो द्रव्यलिंगी के लिए है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है, स्पष्ट किया है। तो जो सम्यक दर्शन की निर्मलता है यानी कि दर्शन मोह का अभाव होकर के जो परिणमन में निर्मलता है, यह निर्मलता के कारण संयम की वृद्धि होती है। अगर दर्शन मोह का अभाव होकर के सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं प्राप्त होती तो संयम भी वर्धमान होने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ परमार्थ संयम कौन सा है कि स्वरूप में लीन हो जाना, वृत्ति परिणति को बाहर नहीं जाना, यही परमार्थ संयम है, और ये सम्यक दर्शन की निर्मलता के कारण ये भी वर्धमान होता है, इसका सिंचन होता है। कैसे? प्रैक्टिकल रूप से कैसे होता है कि जैसे कोई वृक्ष के मूल में पानी का सिंचन किया जाता है, वृक्ष के मूल में फल पर पानी नहीं दिया जाता है, अगर फल को पानी पिलाया जाए या छांटा जाए तो फल बिगड़ जाएगा, आम बड़ी बड़ी हो छोटी हो कैसे, उसके ऊपर पानी नहीं दिया जाता, मूल में पानी दिया जाता है। वैसे दंशन मूलो धम्मो, जो धर्म जो श्रद्धान है मूल में, जो श्रद्धान है धर्म का, उसका सिंचन होता है बार बार, उसी का बल आता है। श्रद्धान के परिणाम का जो बल है, पुरुषार्थ श्रद्धान के अनुसार चलता है, तो ये श्रद्धा बल जो काम करता है उतना संयम वर्धमान होता है। जितना जितना श्रद्धा बल काम करता है जोर से, उतना उतना संयम वर्धमान हो जाता है। संयम मैंने आत्मस्थिरता, स्वरूप की स्थिरता वर्धमान होती है और वितरागता वर्धमान होती है साथ ही साथ। जितनी जितनी वितरागता वर्धमान होती है उतना उतना राग का अभाव हो जाता है। जो जो संयम वर्धमान होता है त्यों त्यों द्रव्यान योग भी विशेष रूप से यथार्थ रूप से परिणमित होने लगता है, उनकी गहराई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ऐसा होता है। और उन सभी का कारण क्या है कि उसका कारण भी द्रव्यान योग है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का कारण कौन है कि द्रव्यान योग है। दर्शनों का अनुभाग घटने से द्रव्यान योग परिणमित हुआ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो संयम वर्धमान होगा।
इन सब का मूल तो रचे सत्पुरुष की चरण शाली के कृपा।
हाँ पहचान है ना, पहचान से, पहचान से
मूल इधर है,
मूल तो इधर है, क्योंकि सबसे पहला बाह्य में इस तरह झुकता है। अनादि से जो परिणाम की दिशा बहिर्मुख है उसमें सच्चा फेरफार होने का कहां से हुआ कि बाहर में जो सत्पुरुष है फिर बाहर में नहीं रहता, फिर अंतर में आता है। जो सत्पुरुष है उसके प्रति जो पहचान से ढलन होती है वहां से फिर ये बात होने लगती है। दर्शनों का यथार्थ अनुभाग होता है, घटता है, फिर उसका अभाव होता है, फिर संयम वर्धमान होता है और द्रव्यान योग विशेष रूप पर्याय कहने में आती है, क्योंकि उसमें पहचान है और पहचान ज्ञान में आती है, इसलिए वो पहचान से आने वाला बहुमान रूप भक्ति उसको ज्ञान की पर्याय कहने में आती है। तो अपने देवलाली में बहुत चला था भक्ति का प्रकरण। सामान्यतः द्रव्यानुयोग की योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है। सर्व सामान्य जन को द्रव्यानुयोग की योग्यता प्राप्त होती ही नहीं है, ये बहुत भारी खुराक है। जैसे चक्रवर्ती का एक कवड़ अगर इसके 96 करोड़ पायदल के रसोई में डाला जाए तो सबको टट्टी लग जाए, क्या पचा नहीं सके। चक्रवर्ती तो कितना भी कमल खा लेता है, उसका तो भोजन ज्यादा होता है, लेकिन इसका एक कमल भी उतना उसमें उतना भस्म रहता है, हीरों की भस्म है ऐसे बड़ी बड़ी, तो सामान्य आदमी पचा सकता नहीं। ऐसा द्रव्यानुयोग का विषय भी पात्रता के साथ हाथ में लेना है। क्या सूचना है इधर, सामान्यतः कहने कह करके ऐसा कहा कि बिना पात्रता द्रव्यानुयोग का विषय हाथ में लिया जाएगा तो पचेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सर्व सामान्य जन का विषय नहीं होता। सामान्यतः द्रव्यानुयोग की योग्यता, योग्यता मैंने पात्रता प्राप्त करना दुर्लभ है। पात्र करना, प्राप्त करना, क्योंकि ऐसी योग्यता आती नहीं जीव को। दर्शन वो यथार्थ रूप से घटेगा तभी द्रव्यानुयोग की योग्यता आएगी, इसके पहले तो द्रव्यानुयोग की योग्यता नहीं होती, क्योंकि उसमें शुष्कता आने की जगह बहुत है। इसमें शुष्कता आने की जगह बहुत है, शुष्क ज्ञान हो जाता है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता, ज्ञान शुष्क हो जाता है। इसलिए आनंद घन जी ने द्रव्यानुयोग का विषय तीर्थंकरों की स्तुति में लिया है। ऐसा क्यों किया, विचारणीय प्रश्न है ये। जो द्रव्यानुयोग का विषय है वो तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए लिया, स्तुति करने में लिया, भक्ति के साथ क्यों लिया? यही कारण है कि उसमें द्रव्यानुयोग से शुष्कता नहीं आ जाए। अगर शुष्कता आ गई तो ये विपरीतता इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर उसको द्रव्यानुयोग जो बहुत सुंदर निमित्त है, उत्कृष्ट निमित्त है, वहीं गड़बड़ कर दिया, फिर उसके लिए तो कोई जगह रही नहीं, बड़ी गड़बड़ हो गई उसके लिए। तो सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराया मतलब क्या? सैकड़ों हजारों लोग आते थे गुरुदेव के पास, किसी के हरेक के पास कोई, हरेक को नापने के लिए कोई थर्मोमीटर छोड़ रखा जाता है क्या? चलो इसका बुखार भी नाप लो, उसका बुखार भी नाप लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें गिनती क्या होती है कि इस काल में तो कोई विरल जीवी पात्र होंगे, हजारों में से कौन होगा ऐसा तो कोई पता नहीं चलता। सुगानी जी फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत उत्कृष्ट पात्रता लेकर के सोनगढ़ आए, कैसे पता चले? आपस में किसी को देखा भी नहीं हो, आगे कभी मिला ही नहीं हो, न कभी बातचीत होने का प्रसंग भी हुआ हो, अब कैसे पता चले? तो उन लोगों के लिए वो वाणी छूटी थी क्या? एरे गेरे के लिए नहीं, ऐसी बात है। ऐसे कोई होते हैं, ऐसे कोई आते भी हैं, क्योंकि सत्पुरुष की वाणी कभी निष्फल जाती नहीं है। अगर निखरती है तो निष्फल नहीं जाती, या तो ये मौन रहते हैं। अगर वाणी निकली, समझो कि किसी ने किसी महाभाग्य जीव का कल्याण होने वाला ही है, ऐसी बात है। हाँ, ये दिव्य ध्वनि है, वो कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए भगवान की वाणी वांझणी नहीं होती, हम कहवाई से सब એમાં કોઈ સપૂત પાકે પાકે ને પાકે છે, ભલે આટલો હીણો કાળ છે તો કોઈ સપૂત પાકે પાકે ને પાકે જ, એ નિયમ છે। તો કોણ હોગા, કોને કિસકો માલુમ પડેગા, કહાં સે આયા હો, કબ આયા હો, ક્યા માલુમ? વો તો અપના સ્વાધ્યાય કરતે થે, મુખ્યતઃ ક્યા કહેતે થે, મેં તો મેરા સ્વાધ્યાય કરતા હું, મુજે સમયસાર મેં સે अपना आत्मा का पता चला तो मैं मेरे आत्मरस को विशेष आविर्भाव करने के लिए, वृद्धिगत करने के लिए इसका स्वाध्याय करता हूँ। मैं तो मेरा स्वाध्याय करता हूँ, मेरा रस अध्यात्म रस देख करके कोई सुपात्र जीव को अध्यात्म रस आ जाए निमित्त नैमित्तिक कारण से, हो सकता है किसी की हुनकार हुनार अच्छी होगी, आ जाएगा कहीं से न कहीं न कहीं से, मेरी कुदरत बंधी हुई है इसके साथ, तो आई जाता है, तो काम इसका हो जाएगा। तो उसके लिए सर्वसाधारण शब्द ले लिया है। सर्वसाधारण मैंने सभी को प्राप्ति होगी, ये साधारण लोगों को, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी होती तो ये हालत आज सर्वसाधारण की नहीं होती। क्या लोग तो कैसे कहते हैं कि जैसे हमें कुछ मिल गया हो, हम भी गुरुदेव को सुनते थे, हमको भी बहुत माल मिला है, तो हमको मिल गया है वो दिखावा करना है, उसका दिखावा करना है कि हमको मिला है, हमको मिला है। ऐसे बोलने वाले को, दिखाव करने वाले को तो मिला ही नहीं है, क्योंकि जिसको धन मिलता है और बहुत मिलता है, ऊंचा मिलता है, वो किसी को दिखाता नहीं है। और खास करके ये धर्म दारिद्र का काल है। कैसा काल है? कि धर्म की दरिद्रता आज बहुत है। बहुत दरिद्री जनों के बीच में अगर कोई धर्म धन दिखाता है तो लूटा जाएगा, वो फिर धनवान सबूत रहने वाला नहीं है, मर जाएगा, लूट लेंगे लोग। इसलिए दिखाने का जमाना नहीं है, दिखाएंगे नहीं। तो पात्र है वो समझते हैं, समझते हैं तो अपना काम कर लेते हैं, उतनी बात है। सामान्यतः द्रव्यानुयोग की योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है। मुख्य पात्र इसके कौन है? गौण पात्र तो मुमुक्षु है। आत्माराम परिणामी परम वितराग दृष्टिवान परम असंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं, जो मुनि मुनि मुनिराज हैं। मुनि भगवान की बात किया कि इसके मुख्य पात्र है। सम्यक दृष्टि मुमुक्षु इसके गौण पात्र लिए हैं। देखो प्रश्न आया था, इधर थे ना उस वक्त, तो पंकज भाई का चिट्ठी आया था कि जब आत्माराम परिणामी परम वितराग दृष्टिमंत परम असंग ऐसे महात्मा पुरुष द्रव्यानुयोग के पात्र है, तो कृपालु योग ने, कृपालु देव ने ये द्रव्यानुयोग के विषय में इतना लिखा, हमको तो कैसे काम में आएगा? बता के ध्यान से पढ़ो, तीसरी पंक्ति में लिया है कि दर्शनों का अनुभाग होने से द्रव्यानुयोग परिणत होता है, या सत्पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से भी द्रव्यानुयोग परिणत होता है, तो मुमुक्षु के प्रयोजन की बात आई कि नहीं आई? तो उस पर तो ध्यान नहीं जाता, पर ये मुनिराज की बात आई तो हम क्या करें? ऐसा तो हम है नहीं, ऐसी तो हमारी दिशा है नहीं, तो द्रव्यानुयोग हमारे लायक तो रहा नहीं, तो हम तो दूसरे दूसरे दूसरी बात पढ़ते रहेंगे या दूसरे दूसरी क्रिया करते रहेंगे, पूजा भक्ति यात्रा वगैरह। चलो हो गया बात, ये मुख्य पात्र है, ये मुख्य पात्र है आत्मा आराम परिणामी, जिसको क्षण क्षण में निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्पता जम जाती है, ये आत्मा राम परिणामी है। आत्मा में रमते हैं वही आत्मा राम है। आत्मा राम कौन? वो ब्राह्मीण में आजकल बहुत नाम होते हैं, आत्मा राम है ब्राह्मीण में, वो नाम वेदांती लोग में होते हैं, अपने जैनियों में भी आत्मा आनंद ऐसा शब्द लेते हैं, लेकिन आत्मा राम है, लोगों राम शब्द का प्रयोग करते हैं ना ज्यादा, विष्णु लोग राम शब्द का ज्यादा प्रयोग, क्योंकि तो आत्मा राम, राम में ना क्या कि जो रमणता करे उसको राम कहिए, आत्मा में जो रमणता करते हैं वो आत्मा रामी है, आत्म रामी आता है ना, श्रेयांशनाथ भगवान के पद में आता है, मुनिजन मुनिगण आत्म रामी रे, आनंदगंज जी का पद है, श्रेयांशनाथ भगवान का पद है, श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, ऐसा करके बहुत अच्छा पद है। तो मुनिगण आत्म रामी, आनंदगंज जी ने बोला क्या, मुनिगण तो आत्म रामी होते हैं, मुनिगण आत्म रामी होते हैं, जो आत्म रामी नहीं होते वो मुनि है नहीं, चाहे लिबास मुनि का हो तो हो। सुन छह पंक्ति याद ठीक, अजीत भाई ने याद नहीं, ठीक तो हमने तरह के पद याद है, आत्म रामी श्री श्रेयांश जिन अंतर जामी, क्या कहा कि आत्मा राम परिणामी है, परम वितराग दृष्टिवान है, वितराग दृष्टिवान है, परम वितराग दृष्टिवान है, कहीं भी इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, सारे जगत को संभाव से देखते हैं, ये मेरी भक्ति है, मेरा ये मेरी भक्ति करने वाला मेरा शिष्य है, मेरी भक्ति करता है इसलिए ये मेरा शिष्य है, ऐसा वितराग कभी देखते हैं नहीं है। देखो क्या वितरागता है, ये मेरा भक्त ऐसा कभी नहीं देखा, ये मेरा भक्त है ये मेरा भक्त नहीं है, ऐसा कभी वितराग देखते नहीं है। नहीं, मेरा अपनापन नहीं आता है, प्रसन्नता तो इनकी पात्रता और पात्र गर्भित पात्रता में जो गर्भित चीज पड़ी है उसको देखकर प्रसन्नता आती है, उसमें वो आत्मत्व देखता है, क्या देखता है, आत्मपणा आत्मत्व देखता है, वो आत्मत्व उसको समर्पित भी करते हैं, आत्मत्व देखते हैं, आत्मत्व समर्पित भी करते हुआ एक ना आत्म जागृति में आत्मत्व समीर पर समर्पित करना क्या है जी।
हाँ
राग वधतो जाय छे, छोड़तो जाय छे, राग छोड़वानुं निमित्त छे, राग वधारवानुं निमित्त नथी। राग छूट जाएगा, उसका राग छूटेगा छूटेगा और छूटेगा। वितरागता को जो देखता है वो वितरागता को उत्पन्न करता है, जिसको वितरागता परिणमन करती हुई दिखती है वो स्वयं ही वितरागता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसका देखने का फल ऐसा है। देखो ये स्वपर प्रकाशक है ना ज्ञान, अपनी वितरागता को भी देखे, अपने वितराग स्वरूप को भी देखे, दूसरे के वितरागता को भी देखे। ऐसा नहीं, वो निमित्तत्व नहीं है। देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष जो वितरागी है उसमें वितरागता का निमित्तत्व पाया जाता है, राग का निमित्तत्व नहीं है। राग जिसने किया उसने नया उठावगीर होकर के उठाया, क्या वो उठावगीर है, नया उठाया उसने, राग का निमित्तत्व वहां है ही नहीं। ऐसा लेना
स्वभाव की
काफी अचिंत्यता को ले रहा है। हाँ 833 में है ना, हाँ तो स्वभाव दिखता है 833 में। एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है कृपाल देव का, चौथा पैराग्राफ। जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति, शुद्ध चैतन्य का तेज, शुद्ध चीति मैंने शुद्ध चैतन्य का तेज, जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चीति स्वरूप कांति, कांति माने तेज, परम प्रकट होकर के अचिंत्य करती है, परिणमन को भी चिंतन से पार ले जाती, अचिंत्य परिणमन हो जाता है, वो अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है। ऐसा अचिंत्य द्रव्य कौन है के सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय। देखो ये बात का निश्चय किसने कराया, कि ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार अपार उपकार है। इसके उपकार की कोई सीमा हो सकती है, अपार उपकार है। निज स्वरूप ऐसा बताया, तेजस्वी बताया, कैसा बताया, अनहद बेहद तेजस्वी है, चैतन्य का तेज है वो, ऐसा अचिंत्य तेज दिखाया, परिणमन भी अचिंत्य हो गया। ऐसा देख करके परिणमन अचिंत्य होता है, ऐसा निश्चय जो कराता है निज स्वरूप का, ऐसा निश्चय जो कराता है, ऐसे सत्पुरुष का उपकार कहने के लिए कोई जगत में उपमा पदार्थ है, उपमा के लायक पदार्थ है नहीं। कैसे कैसे वचन निकले हैं, वचन कैसे निकले हैं, ये वचन ऐसे है कि सुपात्रता हो तो चोट जाए उसमें, ऐसा चोट जाए कि कभी वहां से छूटे नहीं, ऐसा चोट जाए, ऐसे वचन है। जी हाँ, शब्द ब्रह्म जैसा ब्रह्म मिटता नहीं वैसे शब्द का आशय इतना चौंटता है, तो शब्द को भी शब्द ब्रह्म कहने में आता है। भगवान की वाणी को शब्द ब्रह्म कहते हैं, ऐसे ज्ञानी की वाणी को भी शब्द ब्रह्म कहते हैं। आत्माराम परिणामी परम वितराग दृष्टिवंत परम असंग रहने वाले ऐसे महात्मा पुरुष इस द्रव्यानु योग के मुख्य पात्र है, उसके मैंने उस द्रव्यानु योग के मुख्य पात्र है बहुमान आता है। कृपाणु देव को मुनिराज को विजुअलाइज करते हैं, क्या मुनिराज का स्मरण नहीं करते? कभी मुनिराज नहीं है तो भी जैसे सामने खड़े हो उसको देख करके जैसे बोलते हो, ऐसी बात है। किसी महत्पुरुष के मनन के लिए पंचास्तिकाय का संक्षिप्त स्वरूप लिखा था। पंचास्तिकाय की जो 175 गाथा है उसका संक्षिप्त अनुवाद करके आगे लिखा है, 766 वाला, उसे मनन के लिए, उस मनन के लिए इसके साथ भेजा है। उसे मनन के लिए, मैंने इस संक्षिप्त लिखा हुआ ग्रंथ को मनन के लिए, आपके मनन के लिए भी इसके साथ भेजा है। किसको पत्र लिख रहे हैं? तारसी भाई कुशलचंद, तारसी भाई कुशलचंद वो वहां का निर्के थे, मोरबी के थे, मोरबी के न्यायाधीश थे, जज थे उस जमाने के, बुजुर्ग थे, गोपालु देव युवावस्था में थे, तब से उनका परिचय था। लेकिन जज होते हुए भी भर बाजार में उसका टेस्ट किया था। वास्तव में क्या था कि ये जो जजिस है वो सामान्य जनों के साथ परिचय नहीं रखते, बैठ उठ नहीं रखते, कुछ ही प्रकार का चाय पानी जिमने का कोई व्यवहार नहीं रखते, वो अलिप्त रहते हैं। क्यों? कि अगर किसी के साथ वो रखते हैं तो उसके ऊपर आरोप आता है कि ये पक्षपात करेगा, इसका करेगा, इसका संबंधी का करेगा, संबंधी का करेगा, वो लोग नहीं रखते हैं। और हायर डिग्निटी होने से ऐसे समाज से थोड़े दूर ही रहते हैं। इनके संबंध जो हुए तो एक दिन वो दोपहर को, वो धूप के दिन थे, गर्मी के दिन थे, बोले कि बाजार जाना है, तो पूरी बाजार में से निकले वो, तो उसके कृपाणु देव के सिर पे वो छत्ता रख करके वो चले थे। लोग देखने लगे कि ये लड़का है, ये बुजुर्ग आदमी है, अपना न्यायाधीश है गांव का, सिटी का, इसके सिर पे छाता रख करके बाजार में से कैसे निकल रहा है। टेस्ट किया था कि दारसी भाई को लोक संगना कैसी है, क्या इस गांव में लोग मुझे पहचानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, मैं कोई बड़ा आदमी हूं, तो मेरा बड़प्पन लोगों के सामने जो है, लोगों के दिमाग में है, उसका उसको विकल्प कैसा रहता है, कैसा होता है। टेस्ट किया था, देखा नहीं, पात्र जीव है, बिल्कुल पात्र जीव है, उसको कोई लोक संगना, लोक प्रतिबंध नहीं है। उसको ये चिट्ठी उसको लिखी है, ऐसे पात्र जीव को लिखी है। माना दिक शत्रु महा निज छंदेन मराय जाता सदगुरु चरण मा अल्प प्रयास है जा। बाकी का निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
नहीं,
हाँ ठीक। सतपुरुष का सानिध्य मिलने पर भी जिसका मान नहीं जाता है, जो वैसा का वैसा अड़ियल रह जाता है, वो तो सतपुरुष के समीप में गया नहीं है, गया ही नहीं है, ऐसी बात है। गया तो नहीं है और उसने संयोग मिला, उसमें अल्प प्रयास भी उसका हुआ नहीं है, वरना तो अल्प प्रयास से चला जाता है। क्या बोले? वो तो अल्प प्रयास से चला जाता है, तो उसने तो अल्प प्रयास भी नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया। देखो कितना निकलता है, ये तो गहराई, जितनी गहराई में जाओ उतना निकलेगा इसमें से। तो जी अल्प प्रयास में जाए, प्रयास शुरू हुए तो अल्प प्रयास में चला जाए, लेकिन उसने दुर्लक्ष किया है अपनी जो मान प्रकृति उसके प्रति दुर्लक्ष किया है। और सबसे बड़ा ये स्वच्छंद मान प्रकृति का होता है, तो दूसरी प्रकृति तो अल्प प्रयास से जा ही जाए, मनुष्य गति में मान प्रकृति बलवान होती है, तीसरे बाकी के तीन कम बलवान होती है। अगर मान चला जाता है अल्प प्रयास से तो तीसरे बाकी के तीन तो अल्प प्रयास से नहीं जाए, वो कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि वो चला जाता है, ऐसी बात है। क्या कहते हैं, तू भेजा है हे आर्य, देखो क्या संबोधन किया, आर्य मैंने उत्तम पुरुष, योग्य पुरुष को आर्य कहते हैं। हे आर्य, द्रव्यानुयोग का फल सर्वभाव से विराम पाने रूप संयम है। द्रव्यानुयोग परिणमत हो गया, सर्व अन्य द्रव्य से विराम पा जाएगा, विराम पा जाएगा, मैंने अन्य द्रव्य के प्रति जाने वाले भाव स्वयं ही मिट जाएंगे, ऐसा संयम प्राप्त होगा। इस पुरुष के ये वचन, इस पुरुष के मैंने हमारे ये वचन, अंतकरण में तू कभी भी शिथिल मत करना। हमारे द्रव्यानुयोग के विषय में निकले हुए वचनामृत है, वो कभी शिथिल भी मत करना, ढीला भी मत करना। छोड़ने का तो सवाल रहता नहीं, भूल जाने का तो सवाल रहता नहीं, शिथिल भी मत करना। अधिक क्या, समाधि का रहस्य यही है, निर्विकल्प समाधि का यही रहस्य है। निर्विकल्प समाधि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के बारहवां गुण स्थान साधक दशा में होती है, शुक्ल ध्यान की समाधि, यही रहस्य है। समाधि का रहस्य यही है और सर्व दुख से मुक्त होने का अनन्य उपाय भी यही है। संसार के सभी दुख छूट जाएगा, एक ही मास्टर की है, सब दुख छुड़ाने के लिए दूसरे दूसरे इलाज, अलग अलग इलाज नहीं करना पड़ेगा, सब संसार के दुख खत्म हो जाएंगे, यही उपाय है। ऐसा ये यहाँ 866 पत्र संपूर्ण होता है, यहाँ तक रखिए।